रुद्राक्ष और मोक्ष एक साथ में बैठे हुए थे। आज काफी वक्त बाद रुद्राक्ष के दिल की बातें बाहर निकली थी। रुद्राक्ष आया तो ईशानी से मिलने के लिए था, लेकिन ईशानी रुद्री के साथ अपनी मॉम से मिलने के लिए गई हुई थी। इस बीच रुद्राक्ष और मोक्ष बातें कर रहे थे। बातों ही बातों में रुद्राक्ष ने मोक्ष से ईशानी के बारे में पूछा। वो जानना चाहता था कि आखिर मोक्ष ईशानी को कैसे जानता है। मोक्ष ने काफी गंभीर चेहरे के साथ कहा, ये उसी टाइम की बात है जब ईशानी के साथ वो इंसिडेंट हुआ था। मुश्किल से कोई एक या दो महीने बीते होंगे जब किसी केस के सिलसिले में मैं नागपुर गया हुआ था, लगभग 4 साल पहले। रात के लगभग 12 बजे के आसपास का टाइम था। नागपुर में उस वक्त बहुत तेज बारिश हो रही थी। इतनी तेज बारिश और रात का वक्त होने की वजह से सड़कें ज्यादातर सुनसान पड़ी थीं। मोक्ष उस वक्त गाड़ी में था। उसे मुंबई के लिए निकलना था, लेकिन बारिश की वजह से वो लेट हो गया और उसे इस वजह से काफी इरिटेशन हो रहा था। मोक्ष कॉल पर बोला, यार तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या? तुम थोड़े टाइम के लिए एडजस्ट नहीं कर सकते? मुझे खुद एक ऐसी लड़की की तलाश है जो हमारा काम कर सके। हाँ जानता हूँ, पैसे सब कुछ होते हैं, लेकिन पैसों के चक्कर में कोई अपनी जान दांव पर नहीं लगाता है, खासकर लड़कियाँ। मोक्ष कॉल पर बात करते हुए गाड़ी चला रहा था तो वहीं उसे कुछ दूर सड़क पर एक लगभग 18 साल की लड़की दिखी जो बिना कुछ सोचे समझे बस भागे जा रही थी। बारिश की वजह से उसके कपड़े उसके बदन से चिपक गए थे। उसके पीछे 30-40 साल के आसपास के आदमी दौड़ रहे थे। उन्होंने काफी शराब पी रखी थी। उनमें से एक पीछे से चिल्लाकर बोला, भाग ले, जितना दूर भाग कर जा सकती है, हमसे तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। देख तो कितने नखरे कर रही है, इससे अच्छा तो इसकी बहन थी, एक आदमी हल्का हंसते हुए बोला। हमने खुद वीडियो में देखा था। अरे मैं इस लड़की को अच्छे से जानता हूँ, ये उस हीरोइन की बहन है। बहन तो ऐसे काम खुलेआम करती है। ठीक है, हमारे पास देने के लिए उतने पैसे नहीं है, लेकिन फ्री में हम भी कुछ नहीं करने वाले हैं। तेरे चॉकलेट खाने जितने पैसे तो आ ही जाएंगे। हाँ, पिछले कई दिनों से इस पर नजर थी, बहुत मुश्किल से पकड़ में आई है। अब जब सामने आ गई है तो इतनी आसानी से थोड़ी ना जाने देंगे, तीसरा आदमी बोला। ईशानी की आंखों में आंसू थे, वो दौड़ते हुए रो रही थी। उसने मन ही मन कहा, प्लीज आज बचा लो भगवान जी, आगे से गलती से भी बाहर नहीं निकलूंगी। रीशुदी के साथ जो भी हुआ उसके बाद से मेरा जीना हराम हो गया है। जब भी बाहर निकलूं खुद को बचाना मुश्किल क्यों हो रहा है? मेरी क्या गलती थी या उनकी क्या गलती थी जो हमारे साथ ये हो रहा है? सोचते हुए ईशानी का ध्यान कुछ पल के लिए इधर उधर हो गया और वो एक पत्थर से टकराकर नीचे गिर गई थी। ईशानी के पैरों में जोरदार चोट लगी थी, वो चाहकर भी नहीं उठ पा रही थी। उसने मुड़कर देखा तो वो तीनों आदमी उसके पास पहुंच चुके थे और उसकी हालत देखकर जोर जोर से हंस रहे थे। एक आदमी ईशानी के पास आया और उसके चेहरे पर चिपके हुए बालों को साइड में करते हुए बोला, ये तो मुझे उससे भी अच्छी लग रही है, चलना चलते हैं, अब अपनी भी एक हिट मूवी निकालेंगे। छोड़ो मुझे, ईशानी ने उसका हाथ झटका कर कहा। वो उठने की कोशिश कर रही थी, उससे उठा नहीं जा रहा था। तभी उसके पास खड़े आदमी ने उसे कमर से पकड़ा और उठाते हुए कहा, इतनी जिद करने की क्या जरूरत है, कह तो रहे हैं कि हम आराम से बड़े प्यार से तुम्हें लेकर जाएंगे। उसके पकड़ने पर ईशानी बुरी तरह घबरा गई। वो जोर जोर से रोने लगी कि तभी अचानक सामने से मोक्ष की गाड़ी आई। उसकी गाड़ी की फ्रंट लाइट इतनी तेज थी कि ईशानी के पास खड़े आदमी की आंखों में पड़ते ही वो गुस्से से चिल्ला कर बोला, कौन है बे? एक तो इन लोगों को रात को भी इतनी बारिश में चैन नहीं पड़ता, अब मेरा दिमाग खिसक रहा है। वहीं गाड़ी चलाते हुए मोक्ष की नजर उन सब की तरफ गई। वो गुस्से में बोला, व्हाट द हेल इज दिस, ऐसे लोग कभी नहीं सुधरेंगे। सड़क पर इतनी रात में अकेले चल रही लड़की जिम्मेदारी होती है, लेकिन इन्हें बस अपनी हवस मिटाने की सोचती है। मेरा बस चले तो इन लोगों की जान ले लूं मैं। मोक्ष ने जल्दी से अपनी रिवॉल्वर निकाली और उसे लोड करके बाहर आया। उसने बिना सोचे समझे ईशानी के पास खड़े आदमी के पैर पर शूट कर दिया। गोली लगते ही वो आदमी जोर से चिल्लाकर बोला, इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, पहले इससे निपटते हैं, बाद में लड़की को देखेंगे। हाँ आ जाओ, पहले मुझसे ही निपट लो, बाद में अगर चलने फिरने की हिम्मत रहे तो लड़की से भी निपट लेना, मोक्ष गुस्से में बोला। वो तीनों ईशानी के साथ क्या करने जा रहे थे ये सोचकर ही मोक्ष अपना आपा खो चुका था। उसने तुरंत दूसरे आदमी के कंधे पर शूट किया तो तीसरे आदमी के पैर पर गोली मारी। उसके एक्शंस काफी क्विक थे और होने ही थे, वो लॉयर होने के साथ में डिफेंस एजेंसी के लिए भी काम करता था। मोक्ष को उन आदमियों से निपटने में ज्यादा टाइम नहीं लगा और वो जमीन पर घायल गिरे हुए थे। मोक्ष ने तुरंत पुलिस को कॉल करके बुलाया। ईशानी बस रोए जा रही थी, अगर आज मोक्ष नहीं आता तो न जाने उसके साथ क्या होता। जब वो पुलिस स्टेशन में थी तो ईशानी ने मोक्ष से कहा, आप जो भी हैं मैं आपको नहीं जानती, पर आज सच में आपने मुझे नई जिंदगी दी है। यहाँ से जाने के बाद मैं कभी अपने कमरे से बाहर भी नहीं निकलूंगी। ईशानी की बात सुनकर मोक्ष ने आंखें छोटी की और उसे डांटते हुए कहा, क्यों नहीं निकलोगी कमरे से बाहर? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, कुछ बुरी मानसिकता के लोग ये सब करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम खुद को घर में कैद कर लोगी। मैंने सुना तुम अपनी कोचिंग क्लासेस से आ रही थी, क्या बनना चाहती हो तुम?
मुझे लॉयर बनना था, ईशानी ने नजरें झुकाकर कहा। बनना था नहीं, तुम एक अच्छी लॉयर बनोगी। किसी भी हादसे के चलते अपने सपनों को मत तोड़ना, अपने इरादे मजबूत रखो, खुद को मजबूत करो और इन सबसे लड़ो। मोक्ष ने ईशानी को काफी प्यार से समझाया। उसके बाद मोक्ष ईशानी को लेकर पुलिस वाले के पास आया। हैरान तो वो तब रह गया जब पुलिस वाला कंप्लेंट लिखने को तैयार नहीं था। उसने कहा, क्या साहब, आप भी ऐसी लड़कियों के चक्कर में आकर टाइम खोटी कर रहे हो? अरे इसका तो काम ही ये है। पुलिस वाले की बात सुनकर ईशानी ने अपनी नजरें नीचे कर ली। वो भी उसे अजीब नजरों से देख रहा था। मोक्ष ने सबसे पहले अपना जैकेट निकाला और ईशानी को पहनाया, क्योंकि बारिश की वजह से उसके कपड़े ट्रांसपेरेंट होकर उसकी बॉडी से चिपके हुए थे। मोक्ष ने इंस्पेक्टर की तरफ घूर कर देखा और सख्त आवाज में कहा, आप कौन होते हैं ये डिसाइड करने वाले कि कौन सी लड़की कैसी होती है? एंड वन मोर थिंग, कोई लड़की कैसी भी हो, ये किसी का हक नहीं है कि कोई उसके साथ जोर जबरदस्ती करे। लगता है आप इसके बारे में जानते नहीं हैं। पूरे नागपुर में इनकी हिस्ट्री से सब वाकिफ हैं। आप नए लगते हैं यहाँ पर, चलो मैं ही बता देता हूँ। आपने ईशानी शर्मा नाम की एक्ट्रेस का नाम सुना होगा, ये उसी की छोटी बहन है। अरे इनका तो काम ही है खुद को बेचना, इंस्पेक्टर ने काफी बेशर्मी के साथ कहा। मोक्ष मुंबई में ही रहता था, ऊपर से आलिया का नाम उस केस से जुड़ा हुआ था, तो वो कैसे ईशानी के नाम से अनजान रह सकता था? उसने एक नजर ईशानी के मासूम चेहरे की तरफ देखा और फिर उसका हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाने लगा। बाहर आते ही मोक्ष ने कहा, मुझे समझ में आ रहा है कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा होगा, तुम मुझे अपने घर लेकर चलो, हम वहीं चलकर बात करते हैं। जब मोक्ष ने अपनी और ईशानी की पहली मुलाकात के बारे में बताया तो रुद्राक्ष की पलकें भीगने लगी थी। उसे इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था। आलिया की एक बेवकूफी ने ईशानी की तो जान ले ही ली, बल्कि मासूम ईशानी के साथ भी काफी कुछ गलत हुआ था।
उस दिन के इंसिडेंट के बारे में बताने के बाद मोक्ष आगे बोला, उसके बाद मैं दीपिका आंटी से मिला, मैंने उन्हें उनके घर से शिफ्ट किया और उन्हें मुंबई लेकर आ गया। वहां से ईशानी की स्टडी कंटिन्यू करवाई और फिर उसे हमारे साथ काम करने को कहा। ईशानी को डिफेंस आर्ट सिखाए, उसे हर तरीके से तैयार किया। अगर सच में मुझे पता होता कि इन सब के पीछे आलिया का ही हाथ है तो मैं बहुत पहले ईशानी को इंसाफ दिला चुका होता, रुद्राक्ष ने धीमी आवाज में कहा। हाँ जानता हूँ आप ऐसा कर चुके होते, पर अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है भाई। इंसाफ तो आज भी नहीं मिला है और ईशानी को अभी भी बहुत कुछ झेलना पड़ रहा है। आपने उससे जबरदस्ती शादी करके अच्छा नहीं किया, मोक्ष ने हल्के गुस्से में कहा। कहीं ना कहीं रुद्राक्ष ने भी ईशानी के साथ गलत ही किया था। मोक्ष की बात सुनकर रुद्राक्ष ने गहरी सांस ली और फिर उसकी तरफ देखकर भौहें उठाकर कहा, अगर मैं उससे शादी नहीं करता तो तुम जानते भी नहीं दावी उसके साथ क्या कुछ नहीं कर जाती। वो उसे किडनैप करवाकर उसे बेचने की फिराक में थी। क्या वो ऐसा सोच भी कैसे सकती है, मोक्ष ने हैरानी से आंखें बड़ी करके कहा। माया खुराना है वो मोक्ष, वो सोचती नहीं कर डालती है, ये तुम अच्छे से जानते हो। ईशानी खुराना खानदान की इज्जत बन जाती तो दादी की कभी हिम्मत नहीं पड़ती कि वो ईशानी के साथ ऐसा स्टेप ले। ईशानी ने फैमिली से अलग होकर खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मान ली, ऊपर से उसने केस भी रीओपन कर लिया। मुझे डर लग रहा है कि दादी फिर से कुछ ऐसा वैसा करने के बारे में ना सोचे, रुद्राक्ष ने काफी केयरिंग वे में कहा। आप चिंता मत कीजिए, हम उसे प्रोटेक्ट कर लेंगे, बस तभी मैंने उसे अकेले नहीं जाने दिया, मोक्ष ने जवाब दिया। रुद्राक्ष ने मोक्ष से तो कुछ नहीं कहा, पर उसके दिल में काफी कुछ चल रहा था। भले ही उसने ईशानी को बचाने के लिए उससे शादी की थी, लेकिन शादी के बाद उसने भी ईशानी के साथ कहीं रूड बिहेव किया था। उनकी पहली रात को उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, गुस्से में ही सही लेकिन गुनहगार तो वो भी था ईशानी का। रुद्राक्ष जल्दी से वहां से उठा और बेचैन होकर बोला, मुझसे अब और नहीं रोका जा रहा है, जितना उससे दूर रहूंगा मेरे अंदर की तड़प उतनी ही बढ़ती जाएगी, मुझे उससे बात करके उसे माफी मांगनी है। रुक जाइए भाई, इतना बेचैन होने की भी जरूरत नहीं है, मैं एक बार दीपिका आंटी से बात करके पूछ लेता हूँ, कहीं ऐसा ना हो वो वहां से निकल जाए और आप यहाँ उनके पास जाने को निकलो, मोक्ष ने रुद्राक्ष को शांत करके जैसे तैसे बिठा दिया था। मोक्ष ने दीपिका से बात की तो उन्हें पता चला कि ईशानी और रुद्री अभी वहां कुछ घंटे और रुकने वाले हैं। ऐसे में रुद्राक्ष का यहाँ से निकलना तब भी सही नहीं था, उसके पास इंतजार करने का और कोई रास्ता नहीं था, और अब उसके इंतजार का फल उसे कब तक मिलने वाला था वो तो ईशानी ही जानती थी। चलो इन दोनों के बीच की गलत फहमियां दूर हो गई, लेकिन माया खुराना शान बैठने वालों में से नहीं है। रुद्राक्ष खुराना फैमिली को छोड़कर आया है तो उसका बदला भी ईशानी से ही लिया जाएगा। अब अगले पार्ट में मिलते हैं, पार्ट पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा।